एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपका पहला मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक बहुत ही अहम दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं।
हाँ, एक ऐसी किताब जिसने बिजनेस की दुनिया में ना सोच को काफी हद तक हिलाकर रख दिया।
बिल्कुल, क्लेटन क्रिस्टेंसन की द इनोवेटर्स डायलेमा, हिंदी में कहें तो नवोन्मेषक की दुविधा।
ये किताब वैसे तो काफी साल पहले आई थी, 25 साल हो गए होंगे शायद।
हाँ, लगभग। लेकिन कमाल की बात यह है कि आज भी शायद पहले से भी ज्यादा इसकी बातें एकदम सटीक लगती हैं।
सही कहा, ये एक बहुत ही अजीब लेकिन जरूरी सवाल उठाती है ना, कि आखिर क्यों इतनी अच्छी मैनेजमेंट वाली सफल कंपनियां
जो सब कुछ सही कर रही होती हैं।
हाँ, वही अक्सर नई टेक्नोलॉजी या बाजार में आए बदलावों के सामने टिक नहीं पाती, ढेर हो जाती हैं।
ये वाकई एक पहेली है। मतलब सोचिए, जो तरीके उन्हें सफल बनाते हैं, जैसे अपने सबसे अच्छे कस्टमर्स की सुनना।
हाँ, और जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मुनाफा दें उन पर ध्यान देना।
बिल्कुल, वही तरीके बाद में उनकी असफलता का कारण कैसे बन जाते हैं।
ये दुविधा समझना तो आज के दौर में सबके लिए जरूरी लगता है, चाहे कोई बड़ी कंपनी में काम करता हो या अपना स्टार्टअप चला रहा हो,
या बस ये समझने में दिलचस्पी रखता हो कि दुनिया, बिजनेस की दुनिया कैसे बदलती है।
तो इस दिलचस्प पहेली में और गहरे उतरने से पहले क्यों ना इसके पीछे जो विचारक हैं, क्लेटन एम क्रिस्टेंसन, उनके बारे में थोड़ी बात कर लें।
हाँ जरूर, वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर थे और इनोवेशन मतलब नई खोज और ग्रोथ, विकास, इस फील्ड में उनका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है।
उनकी बैकग्राउंड भी काफी अलग थी है ना, सिर्फ एकेडमिक नहीं।
हाँ बिल्कुल, उन्होंने बिजनेस की दुनिया में भी काम किया था, कंसल्टिंग की, अपनी कंपनियां भी शुरू की, मतलब प्रैक्टिकल अनुभव था।
और पढ़ाई?
ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स, फिर ऑक्सफोर्ड में रोड्स स्कॉलर रहे और फिर हार्वर्ड से एमबीए और डॉक्टरेट। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का एक मजबूत कॉम्बिनेशन था उनके पास।
और शायद इसीलिए उनका काम इतना खास है, वो सिर्फ थ्योरी नहीं बनाते थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने अलग अलग फील्ड्स जैसे टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी, इनको जोड़ा। और सबसे जरूरी, उन्होंने सालों तक इंडस्ट्रीज का गहराई से अध्ययन किया।
जैसे वो डिस्क ड्राइव वाली इंडस्ट्री?
हाँ, डिस्क ड्राइव, स्टील, खुदाई करने वाली मशीनें, बहुत सारी इनकी केस स्टडीज की।
अच्छा,
और इसी रिसर्च की वजह से वो ऐसे पैटर्न, ऐसे तौर तरीके पकड़ पाए जो बार बार हो रहे थे अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग समय पर।
मतलब सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी समझाया कि क्यों हो रहा है।
एग्जैक्टली, और उन्होंने इनोवेशन के बारे में जो हमारी पुरानी सोच थी ना, उसको सच में चैलेंज किया।
तो चलिए अब आते हैं किताब पर, द इनोवेटर्स डिलेमा। इसका सार क्या है, क्या है ये दुविधा आखिर?
देखिए, जैसा नाम है दुविधा, एक मुश्किल चुनाव, एक पैराडॉक्स। किताब का जो मूल तर्क है वो ये है कि बड़ी सफल कंपनियां
जी
वो इसलिए फेल नहीं होती कि उनका मैनेजमेंट खराब है।
अच्छा,
तो फिर?
बल्कि इसलिए
कि उनका मैनेजमेंट इतना अच्छा है, वो सारे सही काम करता है।
सही काम?
जैसे?
जैसे
अपने सबसे बड़े ग्राहकों की सुनना, सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले मौकों में पैसा लगाना। ये सब लॉजिकल चीजें हैं।
हाँ, ये तो बिल्कुल सही लगता है।
लेकिन इसी सही काम को करने के चक्कर में ना, वो एक खास तरह की इनोवेशन को पहचानने से चूक जाती हैं।
और वो खास तरह का इनोवेशन है
जिसे क्रिस्टेंसन कहते हैं डिसरप्टिव इनोवेशन।
डिसरप्टिव
मतलब विघटनकारी, कुछ तोड़ने वाला।
हाँ, कुछ वैसा ही।
ये इनोवेशन शुरू में अक्सर छोटा लगता है, कम मुनाफे वाला, टेक्नोलॉजी भी शायद उतनी बढ़िया नहीं होती, कमजोर सा दिखता है। क्रिस्टेंसन दो तरह के इनोवेशन में साफ फर्क बताते हैं। पहला है सस्टेनिंग इनोवेशन।
सस्टेनिंग यानी टिकाए रखने वाला।
हाँ, ये क्या करता है, ये मौजूदा प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाता है मौजूदा ग्राहकों के लिए।
जैसे फोन का कैमरा हर साल थोड़ा और अच्छा हो जाता है,
या गाड़ी का माइलेज बढ़ जाता है।
बिल्कुल,
ये जरूरी है, कंपनियां इसमें बहुत अच्छी होती हैं, पर ये गेम को बदलता नहीं है।
ठीक है, और दूसरा?
दूसरा है डिसरप्टिव इनोवेशन। ये कुछ बिल्कुल नया लाता है, हो सकता है वो सस्ता हो या इस्तेमाल में आसान हो या किसी ऐसी जरूरत को पूरा कर रहा हो जिसे बड़ी कंपनियां देख ही नहीं रही।
अच्छा,
शुरू में ये सस्टेनिंग इनोवेशन के मुकाबले कमजोर लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये बेहतर होता जाता है।
और फिर?
फिर या तो ये बिल्कुल नया मार्केट बना लेता है या पुराने मार्केट पर ही कब्जा कर लेता है, और यहीं पर बड़ी और स्थापित कंपनियां मात खा जाती हैं।
ओह, तो ये है वो दुविधा।
हाँ, किताब का सार यही है, सफल कंपनियां सस्टेनिंग इनोवेशन में तो माहिर होती हैं क्योंकि वो उनके मौजूदा बिजनेस मॉडल में फिट बैठता है,
लेकिन डिसरप्टिव इनोवेशन,
वो उनके सिस्टम, उनकी सोच, उनके प्रोसेस में फिट नहीं बैठता और वो उसे नजरअंदाज कर देती हैं। वो जानबूझकर गलती नहीं कर रही होती, वो तर्कसंगत फैसले ले रही होती हैं
जो उन्हें उस वक्त सही लगते हैं।
बिल्कुल, जब तक कि वो डिसरप्शन बड़ा होकर उनके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे देता।
ये तो वाकई सोचने वाली बात है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। किताब में डिस्क ड्राइव इंडस्ट्री का उदाहरण बहुत विस्तार से दिया गया है ना?
हाँ, वो कहानी बहुत कुछ सिखाती है। क्रिस्टेंसन दिखाते हैं कि कैसे जो बड़ी कंपनियां थी, IBM, कंट्रोल डेटा वगैरह, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए बड़ी बड़ी 14-इंच की ड्राइव बनाती थी, वो धीरे धीरे छोटी ड्राइव्स के मार्केट में पिछड़ती गईं। पहले 8 इंच आई, फिर 5.25 इंच, फिर 3.5 इंच।
लेकिन क्या वो ये छोटी ड्राइव बना नहीं सकती थी? टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास?
नहीं, ऐसा नहीं था। वो बना सकती थी और कुछ ने बनाई भी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके जो बड़े ग्राहक थे
मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर वाले,
उन्हें ये छोटी कम कैपेसिटी वाली ड्राइव्स चाहिए ही नहीं थी। उन्हें तो उसी 14 इंच में और ज्यादा स्टोरेज चाहिए थी।
अच्छा, तो कंपनियों ने क्या किया?
वही जो कोई भी अच्छा मैनेजर करता, अपने सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले ग्राहकों की सुनी और सारा ध्यान बड़ी ड्राइव्स को और बेहतर बनाने, मतलब सस्टेनिंग इनोवेशन पर लगा दिया।
और छोटी ड्राइव्स का क्या हुआ?
वो छोटी ड्राइव्स बेकार नहीं थी, उन्होंने नए बाजारों को जन्म दिया। 8 इंच ने मिनी कंप्यूटर को आगे बढ़ाया, 5.25 इंच पर्सनल कंप्यूटर के साथ आई, 3.5 इंच लैपटॉप के जरूरी बन गई।
और हर बार?
हर बार एक नई छोटी कंपनी आई जिसने इस नए अनदेखे बाजार पर फोकस किया और बड़ी बन गई, और जो पुरानी दिग्गज कंपनियां थीं वो इस नए गेम में पीछे रह गई।
कमाल है, ये पैटर्न तो बहुत साफ दिख रहा है। और ये सिर्फ हाईटेक में नहीं हुआ होगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब में मैकेनिकल एक्सकवेटर, मतलब खुदाई करने वाली मशीनों का उदाहरण भी है।
अच्छा, उसमें क्या हुआ?
जो बड़ी कंपनियां केबल से चलने वाली भारी भरकम मशीनें बनाती थीं, उन्होंने हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी को शुरू में कम आका। वो हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी पहले सिर्फ छोटी कम पावरफुल मशीनों में ही काम आती थी,
लेकिन वो बेहतर होती गई होगी।
हाँ, वो सुधरती गई, ज्यादा पावरफुल होती गई, और आखिरकार उसने पूरे मार्केट पर कब्जा कर लिया। पुरानी कंपनियां गायब हो गई।
स्टील इंडस्ट्री का भी जिक्र था शायद?
हाँ, स्टील में भी बड़ी इंटीग्रेटेड स्टील मिलें थीं जो हाई क्वालिटी स्टील बनाती थीं। फिर आई मिनी मिल।
मिनी मिल?
हाँ, उन्होंने एक नई सस्ती टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। शुरू में वो सिर्फ सबसे लो क्वालिटी स्टील बना पाती थी, जैसे सरिया, रीबार,
जिसे बड़ी कंपनियां बनाना पसंद नहीं करती होंगी।
बिल्कुल, कम मार्जिन वाला प्रोडक्ट। बड़ी कंपनियों ने वो मार्केट खुशी खुशी छोड़ दिया, लेकिन मिनी मिल्स धीरे धीरे अपनी टेक्नोलॉजी बेहतर करती गईं और ऊपर के मार्केट्स में भी घुस गईं। बड़ी कंपनियों को चुनौती देने लगीं।
तो ये बार बार होता है, पर सवाल वही है, क्यों कंपनियां क्यों नहीं देख पाती?
क्रिस्टेंसन इसके कुछ बहुत गहरे कारण बताते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वैल्यू नेटवर्क का।
वैल्यू नेटवर्क, ये क्या है?
देखिए, हर कंपनी का ना अपना एक इकोसिस्टम होता है। उसके ग्राहक कैसे हैं, सप्लायर कौन हैं, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, उसका मुनाफे का मॉडल क्या है, ये सब मिलकर उसका वैल्यू नेटवर्क बनाते हैं।
अच्छा, मतलब उसका पूरा कारोबारी माहौल।
हाँ, और कंपनियां इसी नेटवर्क के अंदर सोचने और काम करने की आदी हो जाती हैं। वो उसमें एक तरह से फंस जाती हैं।
फंस जाती हैं? कैसे?
मतलब वो उसी दायरे में सोचती हैं कि क्या मुमकिन है, क्या जरूरी है, क्या फायदेमंद है। और जो डिसरप्टिव इनोवेशन होता है वो अक्सर एक बिल्कुल अलग वैल्यू नेटवर्क में पनपता है।
ओ, जैसे लैपटॉप का वैल्यू नेटवर्क मेन फ्रेम कंप्यूटर के नेटवर्क से अलग था।
बिल्कुल, तो जो स्थापित कंपनियां हैं वो अपने मौजूदा नेटवर्क से इतनी बंधी होती हैं कि उन्हें या तो ये दूसरे नेटवर्क के मौके दिखते नहीं,
या फिर वो उन्हें छोटे या बेकार लगते।
सही कहा, वो उन्हें आकर्षक नहीं लगते।
ये एक बड़ा कारण हुआ। और
एक और बहुत बड़ा कारण है संसाधन आवंटन का पूर्वाग्रह, रिसोर्स एलोकेशन बायस। मतलब कंपनी अपना पैसा और अपने लोग कहाँ लगाती हैं?
जाहिर है, जहाँ सबसे ज्यादा फायदा दिखे, बड़े प्रोजेक्ट्स में जिनसे ज्यादा मुनाफे की उम्मीद हो।
हाँ, और जो उनके सबसे जरूरी ग्राहकों को चाहिए हो।
ये लॉजिकल है,
लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम तब आती है जब कोई डिसरप्टिव आइडिया आता है। वो शुरू में कैसा होता है?
छोटा, अनिश्चित, कम मुनाफे वाला।
बिल्कुल,
तो बड़ी कंपनी के अंदर जो फैसले लेने का सिस्टम है वो ऐसे आइडियाज को सपोर्ट करेगा?
नहीं, शायद नहीं करेगा, उसे प्राथमिकता नहीं देगा।
यहीं पर क्रिस्टेंसन का RPV फ्रेमवर्क आता है। RPV,
ये क्या है?
R मतलब रिसोर्सेज, यानी संसाधन, लोग, पैसा, टेक्नोलॉजी, ब्रांड। P मतलब प्रोसेसेस, यानी प्रक्रियाएं, कंपनी काम कैसे करती है, फैसले कैसे लेती है, प्रोडक्ट्स कैसे बनाती है।
और वी?
वी मतलब वैल्यूज यानी मूल्य। कंपनी की प्राथमिकताएं क्या हैं? वो किस तरह के मुनाफे को अहमियत देती है, कितने बड़े बाजार को आकर्षक मानती है।
अच्छा, रिसोर्सेज, प्रोसेसेस, वैल्यूज।
हाँ, क्रिस्टेंसन कहते हैं कि कंपनी की ताकत सिर्फ उसके रिसोर्सेज में नहीं होती, उसकी प्रोसेसेस और वैल्यूज भी उसकी ताकत होती हैं।
लेकिन
यही असली पेंच है, जो प्रोसेसेस और वैल्यूज कंपनी को उसके मौजूदा स्थापित बिजनेस में सफल बनाते हैं।
हाँ,
वही प्रोसेसेस और वैल्यूज नई, छोटी, अनिश्चित, कम मुनाफे वाली डिसरप्टिव आइडियाज के लिए बाधा बन जाती हैं।
ओ, मतलब कंपनी का सिस्टम ही उन नए आइडियाज को नकार देता है।
हाँ, ये एक तरह की संगठनात्मक जड़ता, ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया है, सिस्टम उन्हें फिल्टर कर देता है।
ये तो बहुत गहरी बात है।
बिल्कुल, और इसमें एक और चीज जुड़ जाती है, एसिमेट्रिक मोटिवेशन।
एसिमेट्रिक मोटिवेशन यानी प्रेरणा का असंतुलन।
हाँ, सोचिए एक नई छोटी स्टार्टअप कंपनी है, उसके लिए वो छोटा सा नया डिसरप्टिव मार्केट ही सब कुछ है, वो उसे जीतने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगी।
सही बात है।
लेकिन एक बहुत बड़ी स्थापित कंपनी के लिए वो छोटा सा मार्केट शायद उसके टोटल रेवेन्यू का बहुत छोटा सा हिस्सा है, कम मार्जिन वाला है। क्या उसके मैनेजर्स उस पर उतना ही ध्यान देंगे?
नहीं, शायद नहीं। उनका फोकस तो बड़े बिजनेस पर रहेगा।
बिल्कुल, दोनों की प्रेरणा का स्तर, मोटिवेशन लेवल बिल्कुल अलग है। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक मोटिवेशन। नई कंपनी के लिए वो लड़ाई अस्तित्व की है, बड़ी कंपनी के लिए शायद ध्यान भटकाने वाली।
तो ये सब कारण मिलकर वैल्यू नेटवर्क में फंसना, रिसोर्स एलोकेशन का बायस, आरपीवी फ्रेमवर्क, एसिमेट्रिक मोटिवेशन, ये सब मिलकर उस दुविधा को बनाते हैं।
हाँ, ये बताते हैं कि क्यों अच्छी कंपनियां भी डिसरप्शन का शिकार हो जाती हैं।
तो अगर समस्या इतनी गहरी है, मतलब कंपनी के सिस्टम में ही है, तो फिर इसका हल क्या है? क्या बड़ी कंपनियां कुछ कर ही नहीं सकती?
नहीं, क्रिस्टेंसन ऐसा नहीं कहते कि कुछ नहीं हो सकता, वो समाधान भी सुझाते हैं। और एक बहुत मुख्य सुझाव है।
क्या?
कि डिसरप्टिव प्रोजेक्ट्स के लिए एक बिल्कुल अलग स्वतंत्र इकाई बनाओ।
सेपरेट बिजनेस यूनिट?
अलग यूनिट, मतलब कंपनी के अंदर ही एक छोटी अलग कंपनी जैसी।
हाँ, कुछ वैसा ही। ये यूनिट इतनी छोटी और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि वो छोटे मौकों को लेकर उत्साहित हो, उसे मुख्य कंपनी के बड़े स्ट्रक्चर, भारी भरकम प्रोसेस और ज्यादा मुनाफे वाली सोच से आजाद रखना होगा,
ताकि बड़ी कंपनी का इम्यून सिस्टम उसे खत्म ना कर दे। बिल्कुल, उसके ग्राहक भी नए उभरते हुए बाजार के होने चाहिए, न कि कंपनी के मौजूदा बड़े ग्राहक। उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर भी उसी नए छोटे मार्केट के हिसाब से होना चाहिए।
अच्छा, ये एक तरीका हुआ। और नए बाजारों का पता कैसे लगाया जाए? आपने कहा था कि पारंपरिक मार्केट रिसर्च काम नहीं करती।
हाँ, क्रिस्टेंसन इस पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जो बाजार मौजूद ही नहीं है, उनका विश्लेषण नहीं किया जा सकता।
ये तो सही बात है।
तो डिसरप्टिव इनोवेशन के लिए मार्केट पहले से पता नहीं होता, उसे खोजना पड़ता है। इसके लिए वो डिस्कवरी ड्रिवन प्लानिंग की बात करते हैं।
डिस्कवरी ड्रिवन प्लानिंग, ये क्या है?
इसका मतलब है जल्दी से कुछ बनाओ, एक मिनिमम प्रोडक्ट, और उसे बाजार में उतारो। फिर देखो कि लोग उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, कौन इस्तेमाल करता है, क्यों करता है,
और उनसे सीखो।
हाँ, उनसे सीखो और फिर अपने प्रोडक्ट और स्ट्रैटेजी को बदलो। ये लगातार सीखने और अनुकूलन यानी एडेप्टेशन की प्रक्रिया है। आप पहले से 5 साल का डिटेल प्लान नहीं बना सकते, स्ट्रैटेजी उभर कर आती है।
ये तो स्टार्टअप्स के काम करने के तरीके जैसा लग रहा है।
काफी हद तक वैसा ही है, प्रयोग करो, सीखो, बदलो।
एक और दिलचस्प बात आपने कही थी ओवरशूटिंग के बारे में।
हाँ, ये भी एक जरूरी कॉन्सेप्ट है। अक्सर क्या होता है, कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को लगातार बेहतर बनाती रहती हैं, सस्टेनिंग इनोवेशन करती रहती हैं। वो इतने फीचर्स डाल देती हैं, परफॉर्मेंस इतनी बढ़ा देती हैं कि वो ज्यादातर ग्राहकों की जरूरत से आगे निकल जाती हैं। मतलब ग्राहक उन एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए ज्यादा पैसा देना नहीं चाहते।
अच्छा, जरूरत से ज्यादा अच्छा बना देना।
हाँ, और ये ओवरशूटिंग क्या करती है, ये मार्केट के निचले छोर पर जगह बनाती है।
जगह बनाती है किसके लिए?
ऐसे समाधानों के लिए जो शायद उतने पावरफुल या फीचर रिच ना हो, लेकिन पर्याप्त अच्छे हों, गुड इनफ हों, और शायद सस्ते हों या इस्तेमाल में आसान हो या ज्यादा सुविधाजनक हो।
और यहीं से डिसरप्टिव इनोवेशन घुस आता है।
एग्जैक्टली, वो इस पर्याप्त अच्छे वाले गैप को भरता है जिसे बड़ी कंपनियां नजरअंदाज कर रही होती हैं।
वाह, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं कि ये दुविधा कैसे काम करती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य संदेश, कुछ की टेकअवेज निकालने की कोशिश करें, तो वो क्या होंगे?
मेरे ख्याल से सबसे पहला और सबसे चौंकाने वाला तो वही है, अच्छा मैनेजमेंट ही विफलता का कारण बन सकता है, ये विरोधाभास।
हाँ, ये सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसने मेरी सोच को तो काफी बदला है।
दूसरा, सस्टेनिंग और डिसरप्टिव इनोवेशन के बीच का फर्क समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये दो अलग अलग खेल हैं, इनके नियम अलग हैं, इनके लिए रणनीति अलग चाहिए।
बिल्कुल, आप एक ही तरीके से दोनों को मैनेज नहीं कर सकते। हम अपने आसपास भी देखते हैं भारत में कैसे कुछ पुराने स्थापित बिजनेस नए ऑनलाइन तरीकों या मॉडल्स का मुकाबला करने में संघर्ष करते हैं, शायद वो इस फर्क को नहीं समझ पाते।
तीसरा, संगठनात्मक जड़ता का कॉन्सेप्ट कि कैसे कंपनी अपने वैल्यू नेटवर्क, अपनी प्रक्रियाओं, प्रोसेसेस और मूल्यों वैल्यूज में फंस जाती हैं, वो आरपीवी फ्रेमवर्क।
हाँ, कि ये सिर्फ मैनेजमेंट की सोच की बात नहीं है, ये कंपनी के डीएनए में, उसके सिस्टम में बैठ जाता है। जो चीज उसे सफल बनाती है वही बदलाव के समय उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है।
चौथा टेकअवे मेरे लिए है, बाजार खोजने पर जोर देना, सिर्फ विश्लेषण पर नहीं, खासकर जब आप कुछ नया डिसरप्टिव करने की सोच रहे हो।
हाँ, वो डिस्कवरी ड्रिवन अप्रोच, डेटा अपनी जगह है लेकिन अज्ञात में उतरने के लिए प्रयोग करना, ग्राहकों से सीधे सीखना और लचीला होना ज्यादा जरूरी है।
भारत में भी कई नए स्टार्टअप्स की सफलता की कहानी यही है। उन्होंने शुरुआत शायद छोटे स्तर पर की, देखा कि लोग क्या चाहते हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर उसके हिसाब से खुद को बदला। उन्होंने परफेक्ट प्लान का इंतजार नहीं किया।
किताब में कुछ ऐसी लाइनें या विचार हैं जो दिमाग में रह जाते हैं, जैसे वो बात कि अच्छे प्रबंधक वही करते हैं जो समझदारी भरा लगता है।
और ये समझदारी मुख्य रूप से उनके ग्राहकों और निवेशकों द्वारा तय होती है। हाँ, ये उस दुविधा को बिल्कुल साफ कर देता है। मैनेजर गलत नहीं है, वो लॉजिकल काम कर रहे हैं, पर सिस्टम उन्हें डिसरप्शन से दूर ले जा रहा है।
या ये कि जो बाजार मौजूद ही नहीं है उनका विश्लेषण नहीं किया जा सकता, ये पारंपरिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर सीधी चोट है।
हाँ, डिसरप्शन के लिए एनालिसिस से ज्यादा एक्शन और लर्निंग जरूरी है।
और वो आरपीवी वाली बात, किसी संगठन की प्रक्रियाएं और मूल्य उसकी क्षमताएं तो है लेकिन वही उसकी अक्षमताएं भी परिभाषित करती हैं। मतलब आपकी ताकत ही आपकी कमजोरी है।
ये बहुत पावरफुल विचार है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन विचारों को हम असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई श्रोता किसी बड़ी स्थापित कंपनी में लीडर है, वो क्या करें?
क्रिस्टेंसन के हिसाब से पहली चीज है आंखें खुली रखना। बाजार के निचले छोर पर देखो, हाशिए पर देखो, क्या कोई नई सस्ती, शायद अभी कमजोर लगने वाली तकनीक आ रही है?
ऐसी तकनीक जिसे आपके मुख्य ग्राहक शायद अभी पसंद ना करें।
हाँ, पर क्या वो नए लोगों को कुछ करने में मदद कर रही है? क्या वो नॉन कंजम्पशन को खत्म कर रही है? उसे हल्के में मत लो।
और अगर ऐसा कुछ दिखे तो?
तो उसे प्रोटेक्ट करो, उसे मुख्य बिजनेस की चक्की में पिसने मत दो। हो सके तो एक अलग स्वतंत्र टीम या यूनिट बनाओ,
छोटी फुर्तीली टीम।
हाँ, जिसके लक्ष्य अलग हो, जिसे प्रयोग करने की आजादी हो और जिसे छोटी सफलताओं के लिए भी सराहा जाए। उसे बड़ी कंपनी के इम्यून सिस्टम से बचाना बहुत जरूरी है।
ठीक है, और अगर कोई श्रोता उद्यमी है, अपना स्टार्टअप चला रहा है, उसके लिए क्या सीख है?
उनके लिए सलाह थोड़ी अलग है। क्रिस्टेंसन कहते हैं सीधे बड़ी स्थापित कंपनियों से उनके मजबूत किले में जाके मत लड़ो।
तो फिर कहां लड़े?
उन जगहों को ढूंढो जिन्हें वो बड़ी कंपनियां नजरअंदाज कर रही हैं। ऐसे ग्राहकों को टारगेट करो जो या तो मौजूदा समाधानों से खुश नहीं हैं या उन्हें इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बहुत महंगे हैं या बहुत जटिल हैं।
अच्छा, नॉन कंजम्पशन वाले ग्राहक या अंडरसर्व्ड ग्राहक।
हाँ, और उनके लिए एक पर्याप्त अच्छा, गुड इनफ समाधान बनाओ जो उनकी जरूरत को सादगी से या सस्ते में या आसानी से पूरा करे।
मतलब शुरू में कमतर दिखना बुरा नहीं है।
बिल्कुल नहीं, वो आपकी ताकत बन सकता है क्योंकि तब बड़ी कंपनियां आपको बड़ा खतरा नहीं मानेंगी और आपको बढ़ने का मौका मिल जाएगा। डिसरप्शन अक्सर दबे पांव आता है।
ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। तो अंत में इस पूरी किताब और हमारी बातचीत से आपके लिए सबसे यादगार या कहूं तो सबसे अहम सीख क्या रही?
मेरे लिए तो शायद वही सबसे बड़ा झटका था, ये एहसास कि असफलता हमेशा नाकाबिलियत या बुरी नीयत का नतीजा नहीं होती, कभी कभी वो बेहतरीन मैनेजमेंट का ही नतीजा होती है।
ये सोचना ही बड़ा असहज करता है पर बहुत जरूरी है।
हाँ, ये वाकई एक पैराडॉक्स है।
और मेरे लिए शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे डिसरप्शन अक्सर वहां से शुरू होता है जहां कोई देख नहीं रहा होता, मार्केट के सबसे निचले हिस्से से या उन लोगों से जिन्हें कंपनियां ग्राहक मानती ही नहीं,
नॉन कंज्यूमर्स।
हाँ, ये अवसरों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। वहां देखो जहां दूसरे नहीं देख रहे, और ये समझना कि अलग अलग तरह के इनोवेशन के लिए अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और मानसिकता की जरूरत होती है, ये भी एक बहुत बड़ा सबक है।
सच में, द इनोवेटर्स डायलेमा सिर्फ एक बिजनेस बुक नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, बाजार और बदलाव की गति को समझने का एक बहुत शक्तिशाली फ्रेमवर्क है। आज भी उतने ही प्रासंगिक।
बिल्कुल।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।